Dear students of MSc class 2nd semester, School of Studies in Microbiology. Today we are going to discuss about two types of antigen antibody reaction. The first one is RIA, which is called radioimmunoassay, and another is ELISA, ELISA, ELISA. It means enzyme-linked immunosorbent assay. So first is radioimmunoassay. So the radioimmunoassay is most of the sensitive technique for detecting antigen or antibody. Okay, antigen or antibody detect करने के लिए सबसे एक काफी sensitive technique है, जिससे हम किसी patient के अंदर antigen या antibody का पता लगा सकते हैं. इस technique को सबसे पहले 1960 में two endocrinologists एस ए बर्सन एंड रसायलियन येलो ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था टू डिटरमाइन लेवल्स ऑफ इंसुलिन एंड एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्सेस इन डायबिटिक पेशेंट्स. डायबिटिक पेशेंट्स में इन्होंने सबसे पहले इंसुलिन और एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया था. There are some confusion regarding this technique, but they proved its value for measuring hormones, serum protein, drugs and level of vitamin at the minimum concentration of 0.001 microgram per milliliter or less. बाद में उन्होंने ये प्रूव किया कि इसके थ्रू हम हार्मोन को, सीरम प्रोटीन को, ड्रग, विटामिन्स के लेवल को मेजर कर सकते हैं और उसके कम से कम 0.001 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर के लेवल को भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं और मेजर कर सकते हैं इसकी वैल्यू को. लेटर दे बोथ दे रिसीव्ड इन 1977. After the death of Bersen, they received Nobel Prize for this invention. So, what is the principle of RIA? The principle of RIA involves the competitive binding of radiolabeled antigen and unlabeled antigen to the antibody that show high affinity for these antigen. Okay, RIA के principle में एक चीज़ होती है कि एक antibody के लिए radio label antigen और unlabeled antigen के बीच में competition, जो binding का competition होता है वो उस पर depend करता है. और ये जो antibody है ये unlabeled और radio labeled antigen दोनों के लिए ही complementary होना इसका बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एंटीबॉडीज़ लेते हैं, कुछ उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के एंटीबॉडी को लेबल एंटीजन के साथ मिक्स कर सकते हैं. लेबल एंटीजन मतलब जो रेडियो एक्टिविटी जिसके अंदर टैग होगी, रेडियो एक्टिव लेबल टैग से वो टैग होगा. ठीक है, तो जब इस एंटीबॉडी को लेबल एंटीजन से मिक्स करते हैं तो ये जो लेबल एंटीजन है जितनी भी उसके अंदर मीडियम के अंदर एंटीबॉडी है वो सभी की बाइंडिंग साइट को, एंटीजन बाइंडिंग साइट को सैचुरेट कर देता है. सपोज करो हमने कि 10 अगर एंटीबॉडी होंगी उसके अंदर, तो 10 अगर हमने रेडियो लेबल एंटीजन उसके अंदर ऐड किया है, मिक्स किया है, तो वो 10 के 10 रेडियो लेबल एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर जाएंगे. उसके बाद हम टेस्ट सैंपल लेते हैं जिसके अंदर जो एंटीजन होता है वो अनलेबल टाइप का होता है और उसका कंसंट्रेशन भी हमें नहीं पता होता. तो उसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे लार्जर अमाउंट में उसको हम ऐड करते चले जाते हैं. जैसे हम ये सारा वेल्स के अंदर करते हैं, वेल्स के अंदर या किसी भी प्लेट के अंदर करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें हम लार्जर अमाउंट में इसको ऐड करते चले जाते हैं. अब एंटीबॉडी कभी भी रेडियो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन के बीच में उसको, मतलब उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करती. इसलिए जो एंटीबॉडी है उसमें ना, दोनों में, रेडियो लेबल एंटीजन एज वेल एज अनलेबल एंटीजन दोनों टाइप के एंटीजन में उस एंटीबॉडी से बाइंड होने के लिए कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने बताया कि हम अनलेबल एंटीजन है उसका अमाउंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते हैं, तो जब हम कंसंट्रेशन अनलेबल एंटीजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब उतने ही ज़्यादा लेबल एंटीजन तो जैसे जैसे हम अनलेबल एंटीजन को इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही जो लेबल एंटीजन है वो एंटीबॉडी से जो अटैच थे वो डिस्प्लेस्ड होते चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अनलेबल एंटीजन होंगे तो वो ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए और अनलेबल एंटीजन को वो उस जगह से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर ये जो रेडियो लेबल एंटीजन का धीरे धीरे अमाउंट डिस्क्रीज होता जाएगा, अगर हम अनलेबल एंटीजन को ऐड करते जाएंगे हायर अमाउंट में तो रेडियो लेबल एंटीजन का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा और अनलेबल का इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस डिक्रीज अमाउंट के रेडियो लेबल एंटीजन को जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाउंड था उसको हम जो भी टेस्ट से उसको हम क्या करते हैं मीजर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर कितना एंटीजन है, उस टेस्ट सैंपल के अंदर कितना एंटीजन है। मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कीजिए 10 एंटीबॉडीज हैं उसके अंदर, पहले हमने दस रेडियो लेबल एंटीजन बाइंड कर दिए और वो 10 के 10 एंटीबॉडीज से जाकर अटैच हो गए। अब जब हम धीरे धीरे मान लीजिए हमने 5 अनलेबल एंटीजन डाले, यानी जो टेस्ट एंटीजन जिसे हमें टेस्ट करना है वो डाले, तो 5 डिस्प्लेस हुए अनलेबल एंटीजन। ठीक है, तो पहले 5 का पता चला हमको, फिर हमने और ज़्यादा 6 डाले तो कितने डिस्प्लेस हुए, 6 डिस्प्लेस हो गए, है ना। तो यानी कि उसके अंदर अब जो लेबल एंटीजन है, जो एंटीबॉडी से बाइंड है, अभी सिर्फ 4 लेबल एंटीजन बाइंड है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि पहले 10 लेबल एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड थे और अभी 4 लेबल एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड है। तो इसका मतलब कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने 6 लेबल एंटीजन अभी तक उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से रेडियो लेबल और एंटीजन लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में बाइंडिंग होती है, कंपटीशन होता है, और इस तरीके से हम उसका अमाउंट पता लगा सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस द एंटीजन इज जनरली लेबल्ड विद अ गामा इमिटिंग आइसोटोप सच एस I-125, बट बीटा इमिटिंग आइसोटोप सच एस ट्राइटियम H3 कैन ऑल्सो बी रूटीनली यूज फॉर दिस पर्पस। ओके, ये जो रेडियो लेबल है यानी रेडियो एक्टिविटी जो शो करते हैं, या तो गामा रेस को निकालेंगे या बीटा रेस को इमिट करेंगे, तो ये इस टाइप के हम रेडियो लेबल एंटीजन्स को हम रेडियो लेबली टैग कराते हैं। अब ये जो रेडियो लेबल एंटीजन है ये ऐसे मिक्सचर का ही पार्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे आपको एंटीजन रिकॉग्नाइज करना है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट किट्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उस टाइप के रेडियो लेबल एंटीजन होते हैं। और जो आपका टेस्ट सैंपल होता है जिसके अंदर जो अननोन कंसंट्रेशन का टेस्ट एंटीजन होता है जिसे आपको टेस्ट करना होता है उसके अंदर, वो सीरम के अंदर होता है या अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है, उसके अंदर वो अनलेबल एंटीजन होता है। तो उसको आप जब रिएक्शन करते हो तो आप सीरम को या किसी भी बॉडी फ्लूइड को लेते हो जिसके अंदर की अनलेबल्ड एंटीजन होता है, जबकि जो लेबल्ड एंटीजन होता है वो ऑलरेडी आपके पास किट के अंदर या ऐसे मिक्सचर में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसके टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्शन ये सेटअप करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम इतना एंटीजन लेते हैं, फिक्स्ड अमाउंट का रेडियो एक्टिव एंटीजन लेते हैं जो कि 50-70% एंटीबॉडी जाके जिससे बाइंड हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो अनलेबल एंटीजन है
यानी जो जिससे जाके एंटीबॉडी पे बाइंड नहीं हुई है उनकी साइट एक्सपोज रहती है, वो खाली रहते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमने जितना अमाउंट लेबल एंटीजन का था उसकी सिर्फ 50-70% एंटीबॉडी ही उसके अंदर ऐड की है, यानी कि अभी भी 30% जो अनलेबल एंटीजन है वो एज इट इज़ रखे हुए हैं मीडियम के अंदर। तो अब जब इसके अंदर हम कुछ लिमिटेड सप्लाई में हम जब एंटीबॉडी डालेंगे तो इसमें जो बचे हुए लेबल एंटीजन है और अनलेबल एंटीजन है, लेबल एंटीजन है और ऊपर से जब हम अनलेबल एंटीजन डालेंगे तो उस लिमिटेड सप्लाई की एंटीबॉडी से बाइंड होने के लिए अनलेबल्ड और लेबल्ड एंटीजन दोनों में कॉम्पिटिशन बाइंडिंग होगी, जिसके कारण जो डिक्रीज अमाउंट का रेडियोएक्टिव एंटीजन बाइंड होगा उसको हम अमाउंट को डिटेक्ट करेंगे और फिर लेबल एंटीजन सॉरी अनलेबल एंटीजन के अमाउंट का उससे हम पता लगा सकते हैं। तो जो अब इसके अमाउंट का पता लगाने के लिए हम जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है जो कि लेबल एंटीजन से बाइंड है उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं और फ्री एंटीजन को उससे रिमूव कर देते हैं। देन इस प्रेसिपिटेट जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का उसको हम मीजर कर लेते हैं और फिर जैसे कि मैंने बताया था प्रोग्रेसिवली ऐड करते हैं और ऐसे डिक्रीजिंग अमाउंट होता रहता है रेडियो लेबल एंटीजन का, तो उसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं जिसके अंदर दैट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग अनलेबल एंटीजन सैंपल ऑफ द नोन कॉन्सेंट्रेशन इन प्लेस ऑफ टेस्ट सैंपल एंड फ्रॉम दिस प्लॉट द अमाउंट ऑफ एंटीजन इन द टेस्ट मिक्सचर विल बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। तो हमने कितना लेबल एंटीजन को कितना अनलेबल एंटीजन को जैसे जैसे ऐड किया और कितना अनलेबल लेबल एंटीजन सॉरी रिमूव हुआ उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके हम अनलेबल एंटीजन का जो कि टेस्ट सीरम के अंदर है उसका हम पता लगा सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि उसके अंदर हमने लेबल और अनलेबल दोनों डाला है तो वो क्या होता है कि वो ये जो ट्यूब में जो फिनोमिनन होती है या प्लेट में फिनोमिनन होती है उसके अंदर दोनों ही बाउंड एंटीजन भी है और फ्री एंटीजन भी है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की मेथड्स का यूज़ किया जाता है। हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एक सेकेंडरी एंटी आइसोटोप एंटी सीरम के साथ मिक्स कर लेते हैं, है ना। उससे भी हम क्या होता है जो इससे जो बाउंड एंटीजन है चाहे वो लेबल और अनलेबल और फ्री एंटीजन है उसको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसे, मान लो एक कोई एंटीजन का एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है उसमें जो एंटीबॉडी है वो रैबिट की IgG एंटीबॉडी है, ठीक है। इसका मतलब वो एंटीबॉडी हमें पता है कौन सी है तो उसके अगेंस्ट हम एंटी एंटीबॉडी बनाएंगे, यानी उसके अगेंस्ट हम एंटी रैबिट IgG बनाएंगे। अब ये एंटी रैबिट IgG जब हम डालेंगे तो ये एंटी रैबिट IgG जाके उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट कर देगी, ठीक है। इसके अलावा जो के अलावा स्टेफालोकोकस की जो प्रोटीन ए होती है स्टेफालोकोकस ऑरियस की उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हाई एफिनिटी शो करती है IgG के लिए। तो हम एंटी रैबिट IgG की जगह पे हम स्टेफालोकोकस ए प्रोटीन को फॉर्मेलिन से किल्ड करके जो स्टेफालोकोकस ऑरियस होता है उसको हम एंटी रैबिट IgG के जगह पे डाल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसे रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो रेडियो फ्री लेबल जो एंटीजन है जो हमने धीरे धीरे उसको डिक्रीज करके फ्री करवाया है लेबल अनलेबल एंटीजन डाल के जो रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन को जो फ्री करवाया है उसका जो अमाउंट होता है सुपर नेट्रेट में उसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, मीजर कर लेते हैं थ्रू रेडिएशन काउंटर, ठीक है। फिर इसको इस वैल्यू को टोटल अमाउंट ऑफ लेबल एंटीजन जितना भी ऐड किया है, ठीक है, उससे माइनस कर लेते हैं। तरीके से हमको टोटल अमाउंट ऑफ लेबल एंटीजन जो बाउंड है अनलेबल एंटीजन जो बाउंड है उसका पता लगाते हैं। जो रिया है डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड फेस पे कर सकते हैं, इसके लिए हम सिफरोज बीड्स ले सकते हैं जैसे कि एग्रोज होता है ना उस तरीके से सिफारोज जो बीड होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने पहले बताया था जैसे कि प्लेट में करते हैं जो लाइजा प्लेट होती है जो कि पॉलीस्टायरिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड के वेल्स की बनी होती है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इमोबिलाइज करवा सकते हैं। इसके लिए जो एलाइजा प्लेट होती है 96 वेल की एक माइक्रोट्राइटर प्लेट होती है ना, उसके अंदर हम इस पूरे प्रोसीजर को कराते हैं। मेजरली जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है उसके हम डिटेक्शन के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के डिटेक्शन के लिए। नाउ एलाइजा इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे EIA और EIA, ठीक है। एलाइजा जो होता है प्रिंसिपल में रिया के जैसा ही होता है, बट ये रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन की जगह हम एंजाइम से टैग करते हैं। और ये जो एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड विद एन एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विद कलरलेस सब्सट्रेट टू जनरेट कलर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट। यानी कि जो एंजाइम होता है एक उस एंटीबॉडी से बाइंड होता है, फिर जब हम मीडियम के अंदर कलरलेस सब्सट्रेट डालते हैं तो इससे एक कलर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। इस टाइप के सब्सट्रेट को हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। और जो एंजाइम है एलाइजा में हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेस, हॉर्स रेडिस परोक्सीडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये सारे एंजाइम हम एलाइजा में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऐसे है एलाइजा, ये सेंसिटिव है रिया के जैसा है और ज़्यादा सेफ है और लेस कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि रिया में क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी टैग करने के लिए उसमें थोड़ा ज़्यादा ये कॉस्टली होता है। और इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव इमिशन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हम एलाइजा से रिया से ज़्यादा एलाइजा का यूज़ करते हैं। एलाइजा को डिफरेंट टाइप के हम एलाइजा यूज़ कर सकते हैं। एलाइजा का यूज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में किया जाता है। या तो हम एंटीजन को डिटरमाइन कर सकते हैं या हम एंटीबॉडी को, दोनों तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वालिटी भी देख सकते हैं कि किस टाइप का एंटीजन या एंटीबॉडी है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट है या कोई किसी और के अगेंस्ट है, या फिर और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन यानी कितना अमाउंट प्रेजेंट है एंटीजन या एंटीबॉडी का, इस दोनों का ही हम इसके एलाइजा के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम कर्व बना के, स्टैंडर्ड कर्व बना के अननोन अमाउंट का जो एंटीजन या एंटीबॉडी है उसको हम पता लगा सकते हैं। सैंपल के अंदर है। अब टाइप्स ऑफ एलाइजा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा की। इनडायरेक्ट एलाइजा के थ्रू हम एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं। किसके इनडायरेक्ट एलाइजा के थ्रू हम एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की एंटीबॉडी है, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। और इसके अलावा इसके हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट की, कितनी अमाउंट की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से बताया था जैसे कि रिया में यूज़ करते हैं, हम एलाइजा में भी माइक्रोटाइटर प्लेट यूज़ करते हैं जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल पॉलीस्टायरीन के जो वेल्स रहते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसमें उसके कंपैरेटिव एंटीजन, सपोज कीजिए कि आपको हेपेटाइटिस बी का के अगेंस्ट एंटीबॉडी किसी के पेशेंट के सैंपल में डिटरमाइन करनी है, तो उसके कोट उसका जो पॉलीविनाइल कोटिंग है वो हम हेपेटाइटिस बी का एंटीजन लेते हैं और उस हेपेटाइटिस बी के एंटीजन को उस वेल में कोट कर देते हैं, जिसके कारण वो पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल जो होता है या पॉलीस्टाइरीन है उससे वो एंटीजन जाके बाइंड हो जाता है। तो जो एंटीबॉडी डिटरमाइन करनी है तो एंटीजन को कोट कर दिया, देन इसके अंदर जो सीरम में एंटीबॉडी थी वो उसको हमने ऐड किया, सैंपल को ऐड किया। सैंपल के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड AB1। तो जब इसे हम सैंपल को माइक्रोटाइटर प्लेट में डाल देते हैं तो उसके अगेन सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी है, दोनों आपस में रिएक्ट करता है और एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके अलावा जो और भी जो फ्री एंटीबॉडी है उसको वॉश कर देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो जिसे बोलते हैं जो एंजाइम से लिंक्ड होती है उसे बोलते हैं एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटी आइसोटोप एंटीबॉडी AB2 जिसे बोलते हैं, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसका जो एफसी रीजन होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उससे जाके अटैच हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जब हम उसको AB2 को हम सैंपल के अंदर डालते हैं, उस माइक्रोराइटर वेल के अंदर डालते हैं, तो AB2 उससे जाके अटैच हो जाती है। जो अननेसेसरी फ्री AB2 है उसको हम वॉशिंग स्टेप के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं सब्सट्रेट, उस एंजाइम जो भी हमने एंजाइम लिया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी सब्सट्रेट है, जैसे कि हॉर्स पर रेडिस पर ऑक्सीडेज लिया है तो उसका अलग सब्सट्रेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हम सब्सट्रेट डालते हैं। तो अगर रिएक्शन पॉजिटिव है तो वो सब्सट्रेट एंजाइम के साथ कलर करके कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एक स्पेसिफिक फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लेट रीडर होता है उसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि अगर उस वेल के अंदर जो एंटीजन था वो कॉम्प्लीमेंट्री था एंटीबॉडी के, तब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद ही जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे वो उस प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच होगी। अब जब सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है तो अगर हम सब्सट्रेट डालेंगे तो कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, ये होता है पॉजिटिव टेस्ट। और अगर नेगेटिव टेस्ट है तो प्राइमरी एंटीबॉडी ही बाइंड नहीं होगी, तो प्राइमरी एंटीबॉडी जब बाइंड नहीं होगी तो हम जब सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कराएंगे तो वो बाइंड नहीं होगी, तो वो फॉशिंग स्टेप के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो उसके बाद जब हम सब्सट्रेट डालेंगे तो वो सब्सट्रेट रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो उससे एंजाइम लिंक थी और वो वॉशिंग स्टेप के थ्रू बाहर चली गई है। तो इस तरीके से जो कलरलेस प्रोडक्ट आएगा, कलरलेस रिएक्शन होगी, वो होगा नेगेटिव टेस्ट। तो इनडायरेक्ट ELISA इज द मैथड by which you can detect the presence of serum antibodies against HIV virus, which is a causative agent of AIDS. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंटीजन होता है वो HIV के कोर एनवेलप और एनवेलप और कोर प्रोटीन से हम उसका एंटीजन बनाते हैं, जिसे हम माइक्रोटाइटर वेल में कोट करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो सीरम एंटीबॉडी होगी उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये है बात इनडायरेक्ट ELISA की। इसके बाद बात आती है सैंडविच ELISA और कॉम्पिटिटिव ELISA, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो ऑडियो लेक्चर में कवर करूँगी। तो इतना अभी जितना समझाया है उसमें अगर किसी को क्वेरी हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर पर्सनली। ओके, थैंक यू।